Godlywood Studios presents ब्रह्मकुमारीज पॉडकास्ट। जिंदगी बने आसान।
नमस्कार दोस्तों, ओम शांति। स्वागत है आप सभी का हमारे प्रोग्राम जिंदगी बने आसान में। दोस्तों, मंजिलें तो बहुत है लेकिन रास्ते बहुत कठिन है, आज तक हम ये मानते आए। लेकिन उन्हीं रास्तों को सिंप्लीफाई करने में, उन्हीं रास्तों को अपनी ओर आकर्षित करने में, साथ ही साथ अपने आप को और परिवर्तन करने में हमारे गोल्स हमें मदद करते हैं। उन्हीं गोल्स को अचीव करने के लिए हमारे साथ हैं चिन्मय भाई जी, जो कि एक पायलट हैं। ओम शांति भाई जी, वेलकम टू आवर शो।
थैंक यू, ओम शांति।
ब्रदर, हम बात कर रहे हैं कि किस तरह से गोल्स को अचीव करने में हमारी जिंदगी में आप हमारी कैसे मदद कर रहे हैं। इसमें हमने ये जान लिया कि हमें गोल्स क्यों अचीव करने हैं, हमने ये भी जान लिया कि हमें ये गोल्स जिंदगी में कितने इम्पॉर्टेंट हैं। अब मैं ये जानना चाहती हूँ कि इन गोल्स को हम अचीव कैसे करें।
That's a nice question. क्योंकि इसी क्वेश्चन पे कई लोग रुक जाते हैं, राइट, कि कैसे करूं, राइट? तो सबसे पहले तो हमारे पास जो एक प्लान है वो होना चाहिए, और इतना डिटेल प्लान ज़रूरी नहीं है, पर स्ट्रैटेजी होनी चाहिए कि फॉर एग्जांपल मुझे वेट लॉस करना है
जी,
तो मैं एक छोटा सा स्टेप लूं कि नेक्स्ट 24 आवर्स में मैं मेरे नज़दीक शायद कोई जिम है तो वो ढूँढूँ, राइट? या फिर कोई किसी ने अगर वजन कम किया है अपना तो उनसे बात करूं कि कैसे किया। तो एक छोटा सा स्टेप लेना है नेक्स्ट 24 आवर्स में, क्योंकि क्या होता है कि जब हम कोई विचार करते हैं और उस विचार के ऊपर अगर हम एक्शन विद इन 24 आवर्स नहीं लेते तो फिर हम उस विचार को भूल जाते हैं और कोई नया विचार आ जाता है हमारे जीवन में, और फिर हम आगे बढ़ने लगते हैं, पर पता नहीं चलता कि अभी जो हमारा जो गोल था वो किस क्या हुआ उसका
जी,
राइट? सो टेक अ स्मॉल एक्शन, राइट, और मेक श्योर कि उस चीज को मैं विद इन 24 आवर्स करूं। एक सर्वे हुआ था जिसमें लोग जब बुक्स खरीदते हैं तो विद इन 24 आवर्स अगर वो बुक को खोल के रीड करना शुरू करते हैं तो चांसेस है कि वो पूरी बुक पढ़ लेंगे, पर अगर 24 आवर्स के बाद 72 आवर्स हो गया और तब भी उन्होंने बुक नहीं खोला तो उनके बुक पढ़ने का चांसेस 75% ही है।
ओके।
और अगर विद इन अ वीक उन्होंने वो बुक को नहीं खोला तो उनके बुक पढ़ने का चांस 50% ही है। और अगर विद इन अ मंथ और सो उन्होंने ये बुक को पढ़ा नहीं या फिर उनको हाथ नहीं लगाया तो फिर सिर्फ 10% चांस रह जाता है कि वो फिर से उस बुक के पास जाए और उसको खोले और उनको पढ़े।
ओके।
एंड सेम थिंग अप्लाइज कि जब हम कोई एक्शन लेते हैं, लेने की सोचते हैं, तो सबसे पहले हमको वो ऐसी एक्शन होनी चाहिए जो हम तुरंत ले सकें, राइट? बहुत बड़ी कॉम्प्लिकेटेड एक्शन भी हमारे माइंड को बिलीवेबल शायद कभी कभार नहीं होती।
या ट्रू,
राइट? सो टेक द फर्स्ट एक्शन।
ओके, अब इस फर्स्ट एक्शन की मैं बात करना चाहूंगी। मैंने ट्राई किया है कई ऐसे एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ में कि जिस तरह से आपने बुक का एग्जाम्पल दिया कि अगर मैंने एक महीने तक वो बुक नहीं खोला है, द एक्सट्रीम पार्ट ऑफ इट आई एम सेइंग, तो वो बुक मैं शायद पढ़ू ही नहीं।
ट्रू।
कई बार हमारे जो गोल्स होते हैं वो हमें पसंद तो बहुत होते हैं, हम उससे अटैच भी बहुत होते हैं, लेकिन उसे शुरुआत करने से पहले हम डरते हैं। कई बार वो डर होता है, कई बार वो अनसर्टेनिटी होती है, कई बार वो डाउट होता है, और कई बार वो एक ऐसी राह होती है जिससे हमें लगता है कि हम कभी शायद नहीं कर पाएंगे, या सेल्फ एस्टीम लो होने के वजह से भी हम कभी कभी शुरुआत नहीं कर पाते। तो ऐसे में फर्स्ट स्टेप लेना कैसे इजी बनाएं, क्योंकि वही तो नींव है।
आसान तभी होगा जब हम जो दुनिया जिस लॉ से काम करती है उस लॉ को हम समझें, राइट? हर एक चीज का लॉ होता है, लॉ ऑफ फिजिक्स, लॉ ऑफ ग्रेविटी और लॉ ऑफ यू नो मोशन, राइट, डिफरेंट टाइप्स ऑफ लॉज, और उसी लॉ के आधार से पूरी दुनिया चलती है, राइट. हम उसको डिनाई नहीं कर सकते, वो है तो है. अगर 10th फ्लोर से मैं कुछ चीज फेंकू तो वो नीचे आएगी ही आएगी, दैट्स लॉ ऑफ ग्रेविटी.
करेक्ट.
या फिर मैं खुद अपने आप को 10th फ्लोर से फेंकू तो भी मैं नीचे ही आऊंगा, मैं ऊपर नहीं जाऊंगा.
ट्रू.
राइट. सो दीज लॉज आर काइंड ऑफ द अल्टीमेट ट्रूथ, वो अल्टीमेट ट्रूथ है. और अगर हम उसको जान लें, उसको पहचान लें और उनके साथ काम करें, तो हम पूरे यूनिवर्स के साथ काम करेंगे.
दिस इज सो एक्साइटिंग. आई थिंक मैं जरूर जाना चाहूंगी कि वो लॉज क्या है.
एब्सोल्युटली. सो द फर्स्ट लॉ इज द लॉ ऑफ वाइब्रेशन.
ओके.
लॉ ऑफ वाइब्रेशन क्या कहता है कि हर एक चीज का एक वाइब्रेटिंग फ्रीक्वेंसी होता है, हर एक चीज का एक वाइब्रेटिंग तरंग होता है.
ओके.
जो तरंगे हमने शायद स्टडीज में भी पढ़ी होगी, राइट. तो जैसे मैंने ये ब्राउन कलर देखा, तो ये ब्राउन कलर का एक तरंग है, एक फ्रीक्वेंसी है, उस फ्रीक्वेंसी से वो वाइब्रेट हो रहा है, इसलिए मुझे वो ब्राउन दिख रहा है. अगर किसी और तरंग से वो वाइब्रेट होता तो शायद मुझे कोई और दूसरा कलर दिखता, राइट. एवरीथिंग हैज अ फ्रीक्वेंसी. सेम थिंग मेरे थॉट्स की भी एक फ्रीक्वेंसी है, राइट. कि जो भी मैं सोचता हूँ वो एक फ्रीक्वेंसी है.
ओके.
जैसे हमारी रेडियो की भी एक फ्रीक्वेंसी है.
Yeah.
अगर मैं 98.3 FM करूं तो मैं रेडियो मिर्ची से ही ट्यून करूंगा और उसमें जो म्यूजिक आता है वही मैं सुन पाऊंगा.
करेक्ट.
अगर मैं 104.7 करूंगा तो मुझे विविध भारती ही सुनाई देगा.
करेक्ट.
राइट. सो एवरीथिंग हैज अ फ्रीक्वेंसी. और अगर उस फ्रीक्वेंसी से हम ट्यून हो जाएं तो हम ऑटोमेटिक उस चीज को अपनी ओर अट्रैक्ट करेंगे. फॉर एग्जाम्पल, क्या कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि आपने किसी दोस्त के बारे में या फिर आपके माता पिता के बारे में आपने सोचा और नेक्स्ट ही मिनट आपको उसका कॉल आया?
बिल्कुल, ऐसा हुआ है, कई बार हुआ है.
एग्जैक्टली.
और आई थिंक ये सबके साथ होता है.
एब्सोल्युटली.
सो दिस इज व्हाट यू आर टॉकिंग अबाउट.
एग्जैक्टली.
ओह.
तो उस फ्रीक्वेंसी को हम जान ले.
जी.
और एक फ्रीक्वेंसी होती है अचीवमेंट की फ्रीक्वेंसी. देयर इज अ फ्रीक्वेंसी ऑफ अचीवमेंट, देयर इज अ फ्रीक्वेंसी ऑफ सक्सेस.
ओके.
कि जो सक्सेसफुल लोग होते हैं वो एक फ्रीक्वेंसी से सोचते हैं.
ओके.
और अगर उनकी फ्रीक्वेंसी को हम जान ले और उसमें हम ट्यून हो जाएं, देन इट बिकम्स मोर बिलीवेबल फॉर मी. और मेरा जो वाइब्रेटिंग एनर्जी है वो उस प्रकार का हो जाएगा, तो मैं ऐसी चीजें अट्रैक्ट करूंगा. इट्स लाइक लॉ ऑफ अट्रैक्शन, पर बहुत ही क्लियर है कि मैं जिस वाइब्रेशन में चलता हूं उसी वाइब्रेशन को अट्रैक्ट करता हूं. इसलिए कहते हैं बर्ड्स ऑफ द सेम फेदर फ्लॉक टुगेदर.
ओह. ओके.
राइट. तो हमने देखा होता है, मैं ऑब्जर्व करता हूं कि जो भी लोगों को सिर्फ या सिगरेट पीने का व्यसन होता है तो वो साथ में ऑटोमेटिक पुल मिल जाते हैं. जिन लोगों को सक्सेस हैबिट्स का एक रिचुअल होता है तो वो लोग अपने आप मिल जाते हैं. एक कंपनी में जब मैं काम करता था तो जो नॉर्मल एम्प्लॉयज जो थे वो एक साथ काम करते थे और एक साथ ही खाते पीते थे. जो मैनेजर्स और टॉप एंड लेवल के लोग होते हैं वो एक साथ मिलके काम करते हैं और एक साथ खाते पीते हैं, तो वो उनकी फ्रीक्वेंसी से जो है वो काम करते हैं. अभी कोई किसी को भगवान ने नीचा या ऊंचा तो नहीं बनाया, पर हमारी जो फ्रीक्वेंसी से जो हम वाइब्रेट होते हैं उसके अनुसार हम चीज़ों को और अट्रैक्ट हमारी और अट्रैक्ट करते हैं, और उसी तरह से हमारी ज़िंदगी बनती है. अगर हम ये जान लें और फिर अपनी वाइब्रेशंस को धीरे धीरे अप लेके जाएं, तो फिर ये फर्स्ट स्टेप लेना मेरे लिए बहुत ही आसान होगा.
सो ब्रदर, बैक टू आवर टॉपिक. हम बात कर रहे थे लॉ ऑफ वाइब्रेशन की. ये एक ऐसी बात है जो मुझे बहुत ही पॉजिटिव एक ऑरा की तरफ लेके जाती है. जब हम बात करते हैं वाइब्रेशंस की, इसमें मेरा एक एग्जांपल है जिसका आंसर मैं आपसे चाहती हूँ कि जब हम इंटरव्यूज़ के लिए जाते हैं, सपोज मैं एक इंटरव्यू के लिए जा रही हूँ कोई कॉर्पोरेट वर्ल्ड में, एंड मैं बहुत इंटेलिजेंट हूँ, मेरा पूरा CV सपोज, या किसी और व्यक्ति की मैं बात करूँ कि वो व्यक्ति बहुत ही इंटेलिजेंट है और उनकी CV बहुत पावरफुल है, बहुत पावरफुल मतलब जो भी कैंडिडेट्स आए हैं उन सभी में सबसे बेहतर CV शायद उनकी है, एक्सपीरियंस भी बहुत है. और लेकिन जब वो एंटर करते हैं रूम के अंदर में तो वो बहुत ही अंडर कॉन्फिडेंट व्यक्ति की तरह बिहेव करते हैं या अपने आप को प्रेजेंट करते हैं. ऐसे में मैंने नोटिस किया है कि इतनी स्ट्रॉन्ग सीवी के होने के बावजूद भी कई बार लोगों को जॉब नहीं मिल पाता। क्या होता है एग्जैक्टली उस मोमेंट? क्या वो नर्वस हो जाते हैं? क्या उनकी पर्सनालिटी ही वैसी है? अगर वो इतने अंडर कॉन्फिडेंट है तो उन्हें इतने सारे पहले जॉब्स कैसे मिले? तो ये थोड़ा सा कंफ्यूजन है, अगर आप हमें बता सके तो इसका बहुत अच्छा, बिकॉज जो इंटरव्यू देने जाते हैं उन लोगों के लिए ये बहुत बड़ी सीख होगी।
एब्सोल्युटली। तो मेरे जो भी वाइब्रेशंस हैं, मेरे थॉट्स हैं, उसका एक स्टेट ऑफ माइंड कहते हैं लोग, राइट? स्टेट ऑफ माइंड। तो मेंटल स्टेट मेरा अगर उस फ्रीक्वेंसी में वाइब्रेट करता है कि आई एम कॉन्फिडेंट, आई एम पावरफुल, मैं ये कर सकता हूँ, दिस इज अ पीस ऑफ केक फॉर मी, ये बहुत आसान है मेरे लिए, मेरा इतना पावरफुल सीवी है और मेरा एक्सपीरियंस इतना पावरफुल है कि ये जॉब तो मुझे मिलना ही मिलना है, एज अ मैटर ऑफ फैक्ट कंपनी को मैं ये बेनिफिट दे सकूंगा जब मैं कंपनी के साथ काम करूंगा और कंपनी को और आगे बढ़ाऊंगा, एज अ मैटर ऑफ फैक्ट उनको ये फायदा होगा, इतना फायदा होगा कि वो और भी मेरे जैसे लोगों को ढूंढेंगे, राइट? तो अगर मैं इस फ्रीक्वेंसी में काम करूंगा तो मैं जो है वहां पे कुछ लेने की जगह, जॉब लेने की जगह, मैं अपना परफॉर्मेंस देने जा रहा हूँ, राइट? सो आई एम गिविंग समथिंग, और जब मैं देता हूँ तब मैं हमेशा खुश होता हूँ, राइट? अगर जब मैं लेता हूँ तो शायद खुश हो भी या ना भी हो सकता हूँ, डिपेंड्स, पर अगर मैं देता हूँ, व्हेन आई एम गिविंग आई एम सर्विंग, कि मैं उस ऑर्गेनाइजेशन को सर्व करने जा रहा हूँ, और अगर ये मेरा मेंटल स्टेट है और मेरा फिजिकल स्टेट भी अपबीट है, राइट? तो मैं ये करता था जब मैं एज ए स्टूडेंट जॉब ढूंढने जाता था, तो आई यूज टू अप्लाई लॉट ऑफ जॉब्स और बहुत सारे इंटरव्यूज देने जाता था। तो इंटरव्यू देने से पहले जस्ट बिफोर मैं वॉशरूम में जाता था और ऐसे खड़ा हो जाता था, और ऐसे खड़ा होने के बाद मैं कहता था थैंक यू फॉर द वंडरफुल जॉब एंड थैंक यू कि आपने इस इंटेलिजेंस को और इस माइंड को यूज किया आपकी कंपनी को आगे बढ़ाने में। नाउ द फर्स्ट सेकेंड थर्ड शायद नहीं हुआ, बट मुझे वही जॉब मिला जैसा मैं चाहता था इवेंचुअली, राइट? एंड दिस इज द एनर्जी ऑफ रिसीविंग, राइट? बहुत सारे लोग ऐसे जब हम करते हैं तो हमारा मेंटल स्टेट भी चेंज होता है और हमारा जो फिजिकल स्टेट है वो भी चेंज होता हो जाता है। क्यों? क्योंकि माइंड एंड बॉडी आर इंटररिलेटेड, राइट?
ट्रू, एब्सोल्युटली।
यू कैन नेवर बी अनहैप्पी, आप अनहैप्पी नहीं हो सकते स्माइल करते करते, राइट? हम कितनी भी कोशिश करें, पर अगर हम स्माइल करते हैं तो हमारा मेंटल स्टेट ऑटोमेटिकली हैप्पी हो जाता है।
यहाँ तक कि जब हम आंसू, सपोज हम रो भी रहे होते हैं, लेकिन अगर खुशी के आंसू होते हैं तो कहने के लिए तो हम रो रहे हैं, पर रियलिटी ये है कि वो तो खुशी के आंसू,
खुशी के आंसू हैं। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली।
ब्रदर, जैसे आपने अभी बात कही कि हमें रिसीविंग मोड में रहना है और कॉन्फिडेंट रहना है जब हम कहीं भी जाते हैं या कोई कॉम्पिटिशन या जिंदगी के किसी भी पड़ाव पर, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि दो बातें हैं इसमें भी, एक है अंडर, एक है कॉन्फिडेंट और एक है ओवर कॉन्फिडेंट। इन दोनों के बीच में ज्यादा अंतर नहीं होता, थोड़ी सी ही एक लाइन है, एक थिन लाइन है जो इन दोनों के बीच में से पास होती है, और हमें रियलाइज भी नहीं हो पाता कि कब हम कॉन्फिडेंट होने के बदले ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं। तो स्टेबल रहना कैसे पॉसिबल है?
मुझे ये सोचना चाहिए कि फॉर एग्जाम्पल मैं जॉब के लिए जा रहा हूँ इंटरव्यू के लिए, तो डेफिनेटली उधर गिव एंड रिसीव है, राइट? तो मैं अगर अपना परफॉर्मेंस देता हूँ तब मुझे कुछ मिल रहा है, राइट? अगर मैं परफॉर्मेंस नहीं देता हूँ तो मुझे जो मिल रहा है वो टेम्पररी होगा, क्योंकि लॉन्ग टर्म के लिए मैं किसी भी जॉब में इस जमाने में सर्वाइव नहीं कर सकता, राइट? तो अगर मैं ये अपना याद रखूं कि आई एम ऑल्सो हम्बल टू रिसीव, आई एम हैप्पी टू गिव, पर मैं रिसीव करने के लिए हम्बल हूँ, क्योंकि जब देना है तो हाथ ऊपर होना चाहिए, पर रिसीव करना है तो हाथ नीचे होना चाहिए, राइट? और जितना बड़ा ट्री है और जितना बड़ा फ्रूट है उस ट्री में, उतना ज्यादा वो झुकता है, राइट? सो इफ आई वॉन्ट अ बिगर फ्रूट तो मुझे थोड़ा सा झुकना पड़ेगा, तभी मुझे बड़ा फल मिलेगा, राइट? सो अगर मैं ये माइंड में ये एटीट्यूड से जाता हूँ कि आई एम अ सर्वर, और अगर मैं लीडर भी हूँ किसी ऑर्गेनाइजेशन में, पर मैंने कई बड़े बड़े लीडर्स को देखा है, तो वो लोगों को जाके कहते हैं कि मैं आपका सेवक हूँ, आई एम योर सर्वेंट। और मैंने दादी जानकी को देखा है जो कि ब्रह्म कुमारीज के चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव हेड है, उनको देखा है। तो जब भी वो जाते हैं, जहाँ भी जाते हैं, शी इज 101 ईयर्स ओल्ड, राइट, तो जहाँ भी जाते हैं तो वहाँ पे कहते हैं मैं आपकी सेवा में हूँ, मैं आपकी सेवा में हूँ। जबकि वो कह सकते हैं कि मैं आप पे, मतलब एक एक तरह से हम पे वो, उनकी प्रेजेंस भी एक हमारे लिए एक प्रिविलेज होती है।
True.
पर वो हमेशा हम्बलनेस से ये सर्व करते हैं, और इसीलिए शायद वो वर्ल्ड के मोस्ट स्टेबल माइंडेड वुमेन कहलाए गए हैं।
yeah.
क्योंकि उनमें इतनी हम्बलनेस है और इतनी कामनेस है जो शायद ही किसी और लीडर में मैंने देखी है।
बिल्कुल ब्रदर, यहाँ पर एक सवाल आया मेरे दिमाग में कि दो बातें हैं यहाँ पर भी। मैं मानती हूँ कि आप जैसे बात कर रहे हैं ब्रह्मा कुमारीज की हेड की, जो कि जानकी दादी है, ये एक उन्हें एक ऐसा प्लेटफॉर्म मिला है जहाँ पर बातें स्पिरिचुअलिटी की होती है, जहाँ पर लोग ईश्वर की बातें करते हैं, जहाँ पर अच्छे लोग अपने आप को और अच्छा बनाते हैं। लेकिन जब मैं बात करती हूँ कॉर्पोरेट वर्ल्ड की, यहाँ पर अलग अलग प्रकार के लोग होते हैं, अलग अलग माइंडसेट होते हैं, अलग अलग चैलेंजेस होते हैं और अलग अलग कमिटमेंट्स होते हैं। वहाँ पर कैसे एक लीडर अपने आप को एक कॉन्फिडेंट व्यक्ति बनकर ऐसे वाइब्रेशंस क्रिएट करे जिससे उसकी पूरी कंपनी उसके वाइब्रेशंस से और ज़्यादा पावरफुल फील करके और ज़्यादा बेटर परफॉर्म करे। क्योंकि आई बिलीव कि पॉजिटिविटी में आप अगर जी रहे हो तो पॉजिटिव रहना बहुत ईजी है, उस ऑरा में अगर आप जी रहे हो तो आपकी उतनी मेहनत नहीं होती। लेकिन जब आप नेगेटिव वाइब्रेशंस में टकराते हो तब आप उस पॉजिटिव वाइब्रेशंस को उस नेगेटिव वाइब्रेशन से काट दे, तब यू आर अ रियल पावरफुल पर्सन। तो कॉर्पोरेट वर्ल्ड में कैसे पॉसिबल है?
मैंने ये महसूस बहुत बार किया है क्योंकि मैंने कॉर्पोरेट में जॉब्स किया है
जी,
सेल्स में जॉब्स किया है, फिर आफ्टर सेल्स में जॉब्स किया है। तो वहाँ पे बहुत सारे ऐसे एक्सपीरियंसेस होते हैं कि अनहैप्पी कस्टमर आते हैं तो फिर हम देखते हैं कि वो एक दूसरे पर ब्लेम डालते हैं कि इसके कारण हुआ, इसके कारण,
और बहुत झगड़ा होता है
और झगड़ा होता है। तो उस सिचुएशन में मैंने एक कॉम्बिनेशन यूज किया है, कॉम्बिनेशन ऑफ पावरफुल पॉजिटिव वाइब्रेशन एंड कॉम्बिनेशन ऑफ पावरफुल पॉजिटिव कम्युनिकेशन।
ओके,
राइट। वाइब्रेशन तो हम ही खुद ही जान सकते हैं कि हमारा वाइब्रेशन क्या है, पर दूसरे लोगों को तब पता चलेगा जब हम कम्युनिकेट इफेक्टिवली करेंगे, राइट। फॉर एग्जांपल, कोई इंसान मेरे साथ बुरा कर रहा है, उसका शायद इंटेंशन नहीं है, क्योंकि मेरा ये मानना है कि पीपल ऑलवेज हैव गुड इंटेंशन, पर शायद उनका बिहेवियर गुड या बैड होता हो सकता है, राइट। तो मैं पहले उनसे इफेक्टिवली बात करूं कि मुझे पता है कि आपका इंटेंशन हमेशा अच्छा होता है, शायद आपको खुश रखना, खुद को खुश रखना ये आपका इंटेंशन था, या फिर आपका ये गेन होना ये आपका इंटेंशन था, वो बहुत अच्छी बात है। पर ये जो बिहेवियर जो आपका था, तो जो पर्सन जो है उसको मैंने उसके बिहेवियर से अलग कर दिया। पर्सन तो अच्छा है, एंड जब मैं वो बिहेवियर को अलग कर देता हूँ और मैं उसको बताता हूँ कि ये बिहेवियर अगर आप ये चेंज कर दोगे तो और ही अच्छा हो जाएगा, तो उसको रियलाइज होता है कि इसको भी मेरे लिए अच्छे ख्याल है, ये भी मेरे लिए ऊंचा सोचता है।
दिस इज सच अ रेवलेशन। आई थिंक ये चीज अगर हमारे रिलेशनशिप्स में आ जाए तो झगड़े होंगे ही नहीं।
एब्सोल्युटली,
जो मुझे लगता है, क्योंकि हम क्या कहते हैं, हम जब किसी से गुस्सा होते हैं कोई भी कारण से, शायद एक्सपेक्टेशंस की वजह से, शायद सिचुएशन की वजह से, तो हम उन्हें ब्लेम करते हैं डायरेक्टली कि आप ही ऐसे हो, आपकी गलती है, आपने ये किया है, आप ही राइट नहीं हो। तो बेसिकली उसको लगता है कि ये तो डायरेक्टली मुझे बोल रहा है, लेकिन अगर मेरे एक सर्टन बिहेवियर को कोई बोले तो शायद मुझे उतनी तकलीफ नहीं होगी, क्योंकि मुझे लगेगा कि भले ही मेरी इस बिहेवियर को वो लाइक नहीं कर रहे पर वो मुझसे प्यार बहुत करते हैं।
Absolutely.
This is so true.
And it is absolute truth. क्योंकि लोगों को, majority लोगों का intention bad नहीं होता, पर उनको behave शायद situation के आधार से वो good या bad कर देते हैं।
Correct.
और जब उनको हम उनका real intention उनको याद दिलाते हैं तो फिर से अपनी reality में आ जाते हैं, उनके जो soul के जो innate powers है जो हमको यहाँ सिखाए जाते हैं कि इट्स लव, इट्स पीस, इट्स जॉय, इट्स ब्लिस, हैप्पीनेस, वो सब चीज़ें वो फिर से याद आ जाते हैं उनको, और वो फिर से हम अपने वाइब्रेशन की उसको फ्रीक्वेंसी में लेके जा सकते हैं। तो मैंने ये बहुत यूज़ किया है और ये बहुत इफेक्टिवली काम में आया है।
बिल्कुल ब्रदर, आज जो हमने बातें की कहीं ना कहीं मेरे खुद के वाइब्रेशंस में मुझे फील हो रहा है, और इस स्टूडियो के वाइब्रेशंस में भी मुझे वो परिवर्तन नज़र आ रहा है कि किस तरह से पॉजिटिव थॉट्स पूरे वायुमंडल को बदल सकता है।
एब्सोल्युटली,
हमारा जो ये एपिसोड रहा है, आई एम श्योर इस कैमरा के थ्रू हमारी जो ऑडियंस हमें देख रही है उनके आसपास का वातावरण भी कुछ समय के लिए पॉजिटिव हो गया होगा, और उन्होंने वो एक्सपीरियंस किया होगा आई एम श्योर, जिससे वो आगे बढ़कर अपने घर को भी मंदिर बनाएंगे, अपने वर्क प्लेस को भी एक हेवन बनाएंगे, और उनके पूरे विश्व में अपने आप का एक पॉजिटिव ऑरा स्प्रेड करेंगे। थैंक यू सो मच भाई जी, थैंक यू फॉर कमिंग इन दिस शो।
यू वेलकम।
ओम शांति।
ओम शांति।
दोस्तों, आज के एपिसोड में हमने जाना कि अगर हमें आगे बढ़ना है, अगर एक बेहतर इंसान बनना है, साथ ही साथ एक बेहतर भविष्य बनाना है, तो कहीं ना कहीं वाइब्रेशंस ये बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। वाइब्रेशंस और कुछ नहीं है दोस्तों, वो आपके संकल्पों की ही इजाद है। आपके संकल्प ही आपके वाइब्रेशंस क्रिएट करते हैं, तो क्यों ना हम पॉजिटिव संकल्प ही करें, जिससे हमारी वाइब्रेशंस इतने स्ट्रांग बन जाए कि हम जिस चीज पर हाथ रखें वो चीज सोना बन जाए। इस खूबसूरत बात के साथ आज के प्रोग्राम को मेंड करते हैं। आपसे फिर मिलेंगे आपके ही शो में, जिंदगी बने आसान। ओम शांति।